पाप स्वीकार। जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाती है। नीति वचन 28 आयत 13। ईश्वर की क्षमा प्राप्त करने के उपाय सीधे, उचित और विचारपूर्ण हैं। प्रभु हमें ये नहीं कहता कि हम कुछ हृदय विदारक काम कर लें, फिर तब कहीं वो पाप क्षमा प्राप्त कर सकेगा। लंबी और कष्टदायक तीर्थ यात्राओं में पिस जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं। इन सब से हमारे पाप की क्षतिपूर्ति न होगी। लेकिन यदि मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर ले और उनसे पूरी तरह हाथ धो ले, तो उसे करुणाकर का अनुग्रह निश्चय प्राप्त होगा। प्रेरित कहते हैं, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5 आयत 16। अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करो, क्योंकि वे ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। यदि आपने अपने मित्र अथवा पड़ोसी का दिल दुखाया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी गलती उसके सामने स्वीकार कर लें, और फिर तब उसका कर्तव्य है कि वो आपको क्षमा कर दे। तब इसके बाद आपको चाहिए कि आप ईश्वर से क्षमा याचना करें, क्योंकि जिस भाई को आपने क्षुब्ध किया वो ईश्वर की संपत्ति है, और उसे संतप्त कर आपने त्रष्टा और मुक्तिदाता के विरुद्ध पाप किया है। तब ये सारा किस्सा हम लोगों के उस महान मध्यस्थ महायाजक ख्रीष्ट के पास खुलता है, जो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, और जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी भी होता है। इब्रानियों 4 आयत 15। वे सभी बुराइयों को हृदय से दूर कर हमें स्वस्थ और पवित्र बना सकता है। अपने अपराधों को स्वीकार कर अपनी आत्मा को जिन लोगों ने ईश्वर पर समर्पित नहीं किया, उन लोगों ने क्षमा प्राप्ति की ओर पहला कदम भी नहीं उठाया। यदि हमने पश्चाताप का वो शोक भी प्रकट नहीं किया जिस शोक के लिए शोक होता ही नहीं, और यदि हमने आत्मत्याग तथा निस्सहाय होकर अपनी दुर्बलता पर 8-8 आंसू रोकर और पापाचरण को धिक्कार कर अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, तो हमने पाप की माफी के लिए कोई वास्तविक उद्योग नहीं किया। और जब कभी उद्योग नहीं किया तो ईश्वर की शांति भी कभी न प्राप्त की। अपने विगत पापों से मुक्ति न पाने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि हम अपने हृदय को विनीत नहीं बनाते और सत्य के अनुसरण में कार्य करने को तैयार नहीं होते। इस बात पर विशद शिक्षाएं दी गई हैं। पापों की स्वीकृति चाहे अकेले में हो अथवा खुलेआम, सदा हृदय से प्रेरित रहें और स्वच्छंद निर्भीक रूप में व्यक्त होवे। पापी को इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं, फिर लापरवाही और उदासीन रूप में भी ये अच्छा नहीं। जिन्हें पाप से घृणा न मालूम हो उनसे जबरदस्ती पाप की स्वीकृति कराना उत्तम नहीं। वो अपराध स्वीकृति जो अंतस्थल के कुल किनारों को फोड़ती हुई अबाध गति में फूट पड़ती है, अनंत दयामय ईश्वर के पास पहुंच जाती है। स्तोत्रकर्ता ने कहा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हाओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 आयत 18। वास्तविक पाप स्वीकृति एक विशेष रूप की होती और उसमें विशेष विशेष पापों की स्वीकृति होती है। वे ऐसे पाप हो सकते हैं जो केवल ईश्वर के पास ही व्यक्त किए जा सकते हैं। वे ऐसे अपराध हो सकते हैं जिन्हें उन व्यक्तियों के सामने स्वीकार किया जा सकता है जिन पर वे अपराध हुए हों, अथवा वे सार्वजनिक रूप के हो सकते, और तब उसी सार्वजनिक रूप में उन्हें स्वीकार करना भी होगा। किंतु सभी किस्म की स्वीकृति ठीक ठीक, स्पष्ट और साफ हों, तथा उसमें उन्हीं पापों की मंजूरी हो जिनके कारण आप पापी हुए हैं। शामुएल के समय में इस्राएली लोग ईश्वर के विमुख हो गए। वे पाप के परिणाम से यातनाएं भोग रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर से विश्वास उठा लिया था, ईश्वर की उस शक्ति और चातुरी को मिथ्या समझा था जिससे वो राष्ट्रों पर प्रभुत्व रखता है, और ईश्वर अपने शरणागतों की रक्षा और सहायता करता है इस पर भी भरोसा उनका न था। विश्व के महान शासक से वे विमुख हो गए और अपनी पड़ोसी जातियों की तरह ही शासित होने लगे। किंतु शांति प्राप्त करने के पहले उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट रूप में अपराध स्वीकार किया, हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की कि राजा मांगा है। 1 शामुएल 12 आयत 18। जिस पाप के कारण वे पापी घोषित हुए थे उसी पाप को उन्होंने स्वीकार किया। उनकी कृतज्ञता ने उसकी आत्मा को पीड़ित किया और ईश्वर से उन्हें पृथक किया। अपराध स्वीकृति से ईश्वर खुश नहीं होता यदि उसके साथ सच्चा पश्चाताप और सुधार न हो। जीवन में निश्चय रूप से परिवर्तन होना आवश्यक है। ईश्वर जिन बातों से खिन्न और अप्रसन्न हो उन्हें छोड़ देना उचित है। ये तभी संभव है जब पाप पर हम सच्चा शोक प्रकट करेंगे। हमारा जो कर्तव्य है वो तो बड़े साफ शब्दों में व्यक्त किया गया है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, आगे को बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, आत्म से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा ललो। यशाया 1:16-16। यदि दुष्ट जन बंधक फेर देने, अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर देने और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वो न मरेगा, निश्चय जीता रहेगा। यहेजकेल 33:15। प्रायश्चित के बारे पावल ने कहा है, सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छाओं क्या के अनुसार उदासी हुई। तुम में कितना यत्न और उजर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पत्र हुआ। तुमने सब प्रकार से ये दिखाया कि इस बात में तुम निर्दोष हो। 2 कुरिन्थियों 6:11। ईश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल में सच्चा पश्चाताप और नम्रता के जिन आदर्शों का वर्णन किया गया है वो प्रकट करते हैं कि सच्चे पाप स्वीकार के आत्मा में पाप कृति के लिए कोई बहाना या स्वनिर्दोषपन और न्यायपन की कोई कोशिश नहीं की जाती है। जब पाप नैतिक ज्ञान को नष्ट कर देता है तब अपराधी अपने चरित्र के दोषों का अनुभव नहीं कर सकता और न तो अपने कुकृत्यों की गरिमा की ही कल्पना कर सकता है। फिर यदि वो पवित्र आत्मा की छत्रछाया में नहीं आता तो वो अपने पापों की ओर से चक्षुविहीन रहता। ऐसे आदमी के पश्चाताप और अपराध स्वीकृति सच्ची और वास्तविक नहीं हो सकती। वो अपने अपराधों को स्वीकार करते समय प्रत्येक बार अपने कुकृत्य के कुछ बहाने पेश कर देगा और कहेगा कि इन विशेष कारणों और परिस्थितियों के रहने पर वो अमुक काम कभी नहीं करता, अमुक अपराध कभी नहीं करता, और इसलिए वो फिर तिरस्कृत होता है। जब आदम और हवा ने निषिद्ध फल चख लिया तो वे शर्म और भय के मरे कांप उठे। पहले विचार जो उनके मन में आए वे केवल पाप के बहाना ढूंढने और मृत्यु की सजा से बच निकलने के उपाय के ही थे। जब ईश्वर ने उस पाप के बारे पूछा तो आदम ने अपराध का कारण ईश्वर और सहचरी को बताते हुए उत्तर दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया, सो मैंने खाया। उत्पत्ति 3:12। उस स्त्री ने अपराध का दोष सर्प के माथे रखा और कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया सो मैंने खाया। उत्पत्ति 3:13। आपने सर्प को क्यों बनाया? आपने उसे एदेन की बारी में आने क्यों दिया? यही प्रश्न उसने अपने पाप के बहाने में किए और इस तरह अपने पतित होने का सारा दोष ईश्वर के ही मत्थे रख दिया। आत्मनिर्दोषकरण के भाव का जन्म झूठे पिता से ही हुआ और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की ये प्रकृति आदम के सारे पुत्रों और पुत्रियों में पाई जाती है। इस प्रकार की अपराध स्वीकृति स्वर्गीय आत्मा द्वारा प्रेरित नहीं और ईश्वर द्वारा मान्य भी नहीं। सच्ची ग्लानी, सच्चा पश्चाताप तो मनुष्य के मुंह से सारे दोष उगला देगा। उन्हें वो अपने मत्थे दिया और बगैर धोखेबाजी और बहानेबाजी के मंजूर करेगा। उस दिन कर उगाहने हारे की तरह वो भी अपनी आंखें शर्म से नीचे किए हुए चिल्ला उठेगा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और जो अपने अपराधों को मान लेंगे वे बच जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी रक्त बूंदों से पश्चातापी आत्मा के उद्धार के निमित्त निवेदन करेंगे। सच्चे प्रायश्चित और विनय के शब्दों के उदाहरण में अपराध स्वीकृति की वह भावना व्यक्त होती है जिसमें अपराधों के लिए कोई बहाना नहीं रहता और न आत्मनिर्दोषकरण की ही कोई चेष्टा दीख पड़ती है। पावल ने अपने को निर्दोष बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने पापों का चित्रण सारी कालिमा के साथ किया और अपने अपराध घटाने की चेष्टा नहीं की। वह कहता है, मैंने बहुत से पवित्र लोगों को जेलखानों में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था और हर सभा में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यहां तक कि क्रोध के मरे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। प्रेरितों 26 आयत 10 11। वह ये घोषित करते हिचकता नहीं कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 1 तिमुथियुस 1 आयत 15। विनीत और टूटे हुए दिल में जब वास्तविक पश्चाताप के शोक भर जाएंगे तो ईश्वर के प्रेम और कलभेरी के अद्वितीय बलिदान की महत्ता पर अपार श्रद्धा भर जावेगी। फिर जैसे योग्य पुत्र अपने स्नेही पिता के सामने सारी बातें खोलकर कह देता है, वैसे ही वास्तविक प्रायश्चित करने वाला मनुष्य अपने सारे पाप ईश्वर के सामने खोल कर रख देगा, क्योंकि ये लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 आयत 6।